राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज द्वारा 23 अप्रैल 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण 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 कृष्ण
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं समतापे समतापे
निर्दोषं हि समं ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष है और सम है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समम् अवस्थि परमेश्वरं नेहनस्ति आत्मानं ततो याति आत्मात्मानं ततो याति परागतिम्। समता स्वतः सिद्ध है। राग द्वेष हर्ष शोक मद मत्सर काम क्रोधी आने जाने वाले चीजों से समता का नाश नहीं होता है। संत का क्षमता का अनुभव नहीं होता है। क्षमता है जो कुछ रहती। नारायण 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 बोलो कोई बात हो तो बोलो। हाँ कब आप कर
कर्म अकर्म और विकर्म पर थोड़ा प्रकाश डालिए।
थोड़ा विषय कर रहा है अब कर दूंगा कर नमस्ते कर देंगे। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका एकादश स्कंध में महाराज निमि के प्रसंग में आया है कि उस समय हमने सनकादिकों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि बालक है समझता नहीं स्वास्थ्य कहीं नहीं कहा। ये वेदवाद है लौकिक बात नहीं है गहरी बात ऐसा है। गीता में किम कर्म किम अकर्म यति कवि उपयत्र मोहिता ये किम कर्म का प्रश्न यहाँ भी आया है और भी आया आठवां में किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्म किम कर्म बुद्धूत किम कर्म यहाँ भी किम कर्म और किम अकर्म यति कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है इसको बताओ। तो समता आने पर ये ठीक हो जाता है। गीता में तीन योगों का वर्णन किया है भागवत में भी ऐसा ही आया है कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग ऐसे तीन योगों का वर्णन आया है और यहां तक कहते हैं नान्योपायो शिखर रिचित इनके सिवा कोई और उपाय है ही नहीं। तो कर्म नाम है शुभ कर्मों का जो यज्ञ है दान है तप है तीर्थ है व्रत है होम है सत्संग है स्वाध्याय है ये सब कर्म है। और विकर्म जो विरुद्ध कर्म पाप कर है अन्याय है झूठ है कपट लालसा आदि बेईमानी आदि ये विकर्म है। और अकर्म वो है जिसमें ना कर्म है ना विकर्म है, मानो जिसके फल पैदा न होगा, जिसका फल पैदा नहीं होता वो अकर्म है, कर्म होते हुए अकर्म है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म दग्ध हो जाते हैं, मानो वो फलजनक नहीं होते। जैसे चना होते हैं और जो मक्के आदि धान होते हैं वो अंकुर दे देते हैं, परंतु मक्की की ढाड़ी बना ले और चना को भून ले अथवा उबाल ले फिर वे अंकुर नहीं देते, भूख मिटाने में काम आ जाते हैं परंतु आगे उगते नहीं। तो जब तक उगने की शक्ति है तब कर्म और विकर्म होते हैं, और जब उगने की शक्ति नहीं है तब वो अकर्म हो जाते हैं, उसका फल पैदा नहीं होता, उसको अकर्म कहते हैं। इसके अर्थ बहुत से हमने सुने, कोई नौ अर्थ सुने, कोई याद नहीं है, तो खास अर्थ नहीं है भाई। हमने जो अर्थ समझा वो कहता हूँ, वो अपने समझ से अच्छा है इस वास्ते कहता हूँ, और इसका कई तरह से विद्वानों ने अर्थ किया है, वो ठीक नहीं है ये नहीं कहता मैं, हमारे ये अर्थ जचा है वो मैं कह देता हूँ। आप जचे तो उसको मानो, पंडितों की बात मानो, आप मानने में स्वतंत्र है, कोई बाध्य नहीं करते हम कहे मानो। तो ये 16वें श्लोक से 32वें श्लोक तक चलता है, किं कर्म किम अकर्मे इति, यहाँ से कर्म जान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, कर्म जान विद्यतान सर्वान वह कर्म है। तुझे कर्म का प्रकरण भगवान ने चलाया है, कर्म के प्रकरण में विलक्षण बात आई है 18वें श्लोक में, मत भेद सब उस पर होते हैं, कर्मणि अकर्मणि अपश्य अकर्मणि स कर्मयो, गीता हो तो आतु दे लो कोई देख लो, और कर्म तो ठीक ही बात है, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान है और योगी है और संपूर्ण कर्म करने वाला है, उसका करना कुछ बाकी नहीं रहा, इससे सिद्ध हो वो कृत कृत्य हो जाता है। मनुष्य मात्र में तीन तरह की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति का उपयोग करने से कर्मयोग होता है, और जानने की शक्ति को ठीक लगाने से ज्ञान हो जाता है, और मानने की शक्ति लेने से भगवान पर विश्वास हो जाता है। ये तीन बात है, तीनों का फल एक अनंत होता है। तो तीनों में ही भगवान ने ऐसी बातें कही है, कर्म में तो अकर्म या प्रसिद्ध अकर्म से कर्म का, ऐसे ज्ञान में सर्वभूतस्तुम आत्मानम सर्वभूत आत्मनि, जस कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म, ऐसे सर्वभूतस्तुम आत्मानम आत्मान सर्वभूत आत्मनि, ये ज्ञान योग में। भक्ति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, ये भक्ति योग में, यो माम पश्यति सर्वत्र और श्रवण से वही परिस्थिति। तो तीनों योगों में ऐसी बातें कही है, उन पर दृष्टि नहीं जाती, कर्म के ऊपर दृष्टि जाती, कर्म कर्म क्या है। तो जैसे कर्मयोग है ऐसे भक्ति योग, ऐसे ज्ञान योग है, तो इनमें ऐसी विलक्षण बात है कि कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे, ये बात आई। ऐसे आत्मा को सर्वभूतों में देखे, संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखे, ऐसे संपूर्ण परमात्मा को देख रहे, परमात्मा को सब में देख रहे, उसके लिए करते करते कल्याण की बात बताई है। अरुरा भाई, हम तो पूछते हैं कर्म किसका नाम है, तो बताया ना कर्म नाम है जो करने योग्य हो। शास्त्र ने कहा है, व्यवहार में कहा जाता है, जो करने योग्य कर्म कर्म है। अब इससे विरुद्ध जो नहीं करना चाहिए उसको विकर्म कहते हैं। और अकर्म जो कर्म पैदा न हो, तो देखो कर्म में अकर्म लेकर कर्म अकर्म में कर्म देखना क्या है कि कर्मों में खास फल पैदा करने की शक्ति क्या है। एक तो कामना है, एक कर्तृत्व अभिमान है। मैं करता हूँ और इसलिए करता हूँ, ये दो रहने से कर्म फलजनक हो जाते हैं। शुभ अशुभ दोनों ही, शुभ स्वर्गाधिक अनुकूल परिस्थिति पैदा करने वाले हो जाते हैं, और दुष्कर्म है जो विकर्म है, वो फल इच्छा और इसके रखने से करते हैं तो उसका पाप फल हो जाता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर रहा कर्मों का काम हुआ। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, बीच में इस बात चेता देता हूँ, उस बात को ध्यान से सुने। आदमी जो कहते हैं कि सुख दुख होता है ये कर्मों का फल है, सुख दुख कर्मों का फल नहीं है। ये नई बात नहीं है आपको, जिन्होंने पहले सुना है उनके लिए तो कोई बात नहीं, पर नया ही सुना था उसका फल दिखेगा। कभी कर्मों का फल भोगते हैं, सुखी दुखी होते हैं, तो अपने किए कर्मों का फल है। तो कर्मों का फल सुख दुख नहीं है, कर्मों का फल परिस्थिति है। अनुकूल परिस्थिति आ जाती है शुभ कर्मों के फल में, और अशुभ कर्मों के फल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। परिस्थिति वो आती है अनुकूल प्रतिकूल, उस अनुकूलता में सुख मान लेते हैं, प्रतिकूलता में दुख मान लेते हैं। ये मानने वाले की मर्जी है, कर्म फल नहीं दे रही, कर्म ऐसा फल नहीं दे रही। न माने तो वो दूध बदलता ही नहीं। जैसे नारजी महाराज की बच्चा अवस्था में माँ मर गई, तो बालक की माँ मर जाए इसके समान दुख क्या होगा। ये प्रतिकूल है परिस्थिति, पर नारद जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, काफत मिट गई। माँ कहती आ जा भोजन कर ले, खा ले, सो जा कर दे, ऐसे तंग करती थी, अब बड़ा ठीक हो गया, अब स्वतंत्रता है तुम्हारी, ऐसे में राजी हो गए। अब प्रतिकूल परिस्थिति आई थी पाप कर्म से, बंद हो गए, खुश हो गए। तो खुश होना न खुश होना ये है अज्ञान का फल। अज्ञान चला जाता है तो दुख है, सुनना सुख है, सुख तस्वीर वीत राग भय क्रोध दुख गच्छा भय क्रोध और भय क्रोध राग नहीं सोचे। तो राग द्वेष हो जाते हैं अज्ञान से, अज्ञान मिटने से मिट जाते हैं। तो कर्म का फल नहीं है सुख दुख, विशेष ध्यान नहीं है। तो क्या है ये सुख दुख है? अज्ञान का फल, मूर्खता का फल। हरेक बात मूर्ख बाईस हो जाता है। एक राजा के लड़का हुआ, तो लड़के को खिलाने के लिए राजा ने कह दिया इसको ऐसा खिलाओ, ऐसा रखो, किसी चीज की कमी मत आने दो। अगर वो लड़का रो गया तो आप डर जाएंगे, हमें भी चाहिए बदलाव, वो पसंद रहना चाहिए। 4-10 हजार रुपये 20 हजार रुपये लग जाए परवा नहीं, बच्चा नाराज न हो। और बच्चा रो दे तो रोने में काल कोई अनुकूल व प्रतिकूल फल नहीं है, मूर्ख होता है। आप देख लो भले बच्चा रो गया नहीं, ऐसा करो हिम्मत को आप तो रोता है मूर्खता से, ऐसे रोते हैं मूर्खता से, ये बच्चे ही है। मूर्खता जरूरत से नहीं। तो रोना है, दुखी होना है, ये मन है, अनजान है, अज्ञानी है। तो जैसे वो पूरा मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, अनुकूलता में प्रतिकूलता में मौज हो गई, आनंद हो गया, ऐसे रहना। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? कर्म में अकर्म देखना, मानो कर्म फलजनक न हो। यह सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, कामना के संकल्प से रही थे। आरंभ समारंभ है, सम्यक आरंभ है, बढ़िया रीति से। तो क्या रहेगा? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानम, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म दग्ध हो गए, जल गए। जल गए का अर्थ क्या? मानो अगाड़ी अंकुर नहीं देंगे, फलजनक नहीं होंगे, काम तो होगा ही। तो ये ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं। ऐसे कर्मयोग से ही गत संघर्ष से मुक्त से और ज्ञानावस्थित से यज्ञ आचर तो कर्म समग्र प्रवृत्ति। यज्ञ आया तो यज्ञ अर्थात कर्मो अन्यत्र लोको यं कर्म बंधन। यज्ञ से अन्यत्र करते हो तो कर्म बांधने वाला होता है। यज्ञार्थ कर्म किया जाए तो समग्र प्रवृत्ति। अभी तो क्या पुराने कर्म ही सब भीन हो जाते, कोई भी कर्म फलजन का नहीं होता। गल संघ से मुक्त से ज्ञान आवर्जित से यज्ञ आचर तो कर्म समग्र प्रवृत्ति। तो यज्ञ क्या? यज्ञ ना कर सब कर्म। यज्ञ के भी कई अर्थ किए, अपन ऐसे ही लिया है। जो कर्तव्य कर्म है सब यज्ञ, जितने शुभ कर्म है सब यज्ञ के अंतर्गत है। दग्ध यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, अर्थ यज्ञ, संशय सब यज्ञ है। तो फल जन होते हैं, शुभ कर्म मिलते वो फल होता है। तो यज्ञार्थ कर्म करे मन लोक संग्रह के लिए, लोगों की मर्यादा ठीक रहे उसके लिए किया जाए, वो यज्ञार्थ कर्म है। और अन्यत्र क्या है? अपने स्वार्थ के लिए किया जाए वो कर्म कर्म होता है। हमने बात पढ़ी वो याद आ गई। कहते कर्म शुभ और अशुभ होते हैं। इनमें जो कामना रखकर किया जाए सब अशुभ कर्म है, चाहे शास्त्रीय विधि विधान से हो, यज्ञ दान तप तीर्थ बड़ी विधान से ठीक से किया जाए, पर कामना को ले किया तो वो शुभ का अशुभ कर्म कब सब अशुभ कर्म। और कामना नहीं किया जाए वो शुभ कर्म। एक दिन पोथी में लिखा मैंने पढ़ लिया, कोई आपको कह दिया भाई डाकी के पास दो, जो आता है पत्र को दे देते हैं, ये आपका पत्र ऐसा, ना तो घर से कार्ड देता, ना लिफावा देता, ना मैनर देता, घर से कुछ नहीं चेहरा करना हो रही है। ऐसे पुस्तक हमारे पढ़ा है, तो उसमें ये बात पढ़ी कि जो काम ला लेकर किया जाए वो कर्म है अशुभ। अशुभ तो अशुभ कर्म बांधने होता है, दैव संबंधि मोक्ष आया, निबंध है आसुरी मता। तो आसुरी ना असुरा प्राण पूर्ण पोषण के लिए स्वाद के लिए किया जाए वो आसुर संपत्ति है, वो बांधने वाली है। सुनिए, हम ऐसा विभाग कर लेते हैं कि शास्त्र विहित कर्म शुभ है और अशास्त्र विहित शास्त्र निषेध कर दे वो अशुभ है। ये भी अच्छा चीज है, बढ़िया चीज है। परंतु काम कर रहे कर करे तो अशुभ ही होगा, जन्म होगा बार बार निबंध आया सुनी बता ब्रह्म लोग तरह जाओ तो पास आओ जोर से आ ब्रह्म लोग का पुनरावर्ति ना, तो अशुभ ही है मार जन्म मन गए बार बार, तो शुभ क्या होगा बताओ। तो ये कर्म है। अब शुभ कर्म भी फल ना दे, अशुभ कर्म होते ही नहीं उसके द्वारा। कोई हो जाए चलते फिरते कीड़े मर गई, किसी को दुख भी हो गया, तो वो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पाप लगाने की भावना नहीं है। अनजान पड़े में हो जाए पर निगाह नहीं रख रहे कीड़ा मर जाए तो पाप लगता है, पर तुम्हारे हम क्या करेंगे तो पाप लगेगा। और निगाह रंगते रंगते ही मर जाता है, मतलब या ठाकुर समय कर्म देंगे अच्छा करूंगा इसमें से हो जाए तो उसका पाप लगता है और आप साफ हो जाओ कोई पाप नहीं सारी रंग केवल कर्म कुर्बन नापने होती खेल केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए काम किया जाए तो किलबिश मानो पाप को प्राप्त नहीं होता इससे सिद्ध होता है पाप कर्म तो होता है उसको लगता नहीं है यार ऐसे स्वभाव नियत कर्म कुर्बन नापने होती किलबिश स्वभाव नियत कर्म है अपने स्वभाव ब्राह्मण शक्ति वेश किए कर्म है वो करता हुआ पाप का भागी नहीं होता पाप का भागी कामना से होता है कामना बंधन है निबंध है असली में था युक्ता कर्म फल त्यक्त्वा शांति नापनो नहीं चाहिए अयुक्ता काम कार्य फल सब तो निबंध थे फल हो सब निबंध बनो चाहे कोई फल देकर करे तो निष्काम भाव से कर्म किए जाए उनमें सब निष्काम भाव से वे स्वाध्याय करो जप करो तप करो कीर्तन करो सत्संग करो चिंतन करो ध्यान करो समाधि लगाओ पर कामना को लेकर करेगा तो बंधन है और निष्काम से किया जाए तो मुक्ति है ये बात है समाधि तक ही कर्म भी है करना है ना समाधि करना है तो वो भी सकाम भाव से नहीं भगवत की त्याग करो जगत के उद्धार के लिए करो तो वो कर्म अकर्म हो जाएगा तो अकर्म कर्मणी अकर्म अपश्चित अकर्म नहीं सो कर्म अब ध्यान देने से थोड़ा अर्थ अच्छा है कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है तो कर्म में अकर्म देखना क्या कि निष्काम भाव से करे करते जो अभिमान रहित होकर करे तो वो कर्म बंधन कारण नहीं होता अकर्म होता है और निष्काम भाव कर्तृत्व रहित जो कर्म है उसमें कर्म किए जाए तो बांधते नहीं और कर्म नहीं अकर्म अकर्म से कर्म या अकर्म में कर्म हो जाए निष्काम भाव रहित कर्तृत्व न हो कर्म हो जाए और बंधन नहीं होगा मानो करने और न करने का जिम्मेदारी कामना के ऊपर है कामना न करने से कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म इसका अर्थ वो अकर्म कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म मन कर्म हो जाए निष्काम भाव निष्काम भाव रहते ही कर्म तो निष्काम भाव मुख्य रहा और सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूत आत्मनि संपूर्ण भूतों में अपने को देखो और अपने में संपूर्ण भूतों को देखो तो अपना स्वरूप ही मुख्य रहा सर्वभूत आत्मान सर्वभूत आत्मनि ऐसे यो माम पश्यति सर्वत्र अरे सर्वंच मई पश्यति सब जगह मेरे को देखे और सबको मेरे में देखे सब में मेरे को देखे तो मेरे को देखना ही मुख्य हुआ सब मुख्य नहीं तो मेरे को देखना आत्मा को देखना और अकर्म को देखना तीनों को एक ही फल हुआ कर्म फल अकर्म हो गया तो अकर्म को चाहे फल रहित फल रहित कर लो कर मानो करता हुआ न करता हुआ दोनों से नहीं बंधता और कामना करनी तो अभिमान हो तो करने से ही बंधता न करने से ही बन जाता है न को बैठा है तो तुम्हें हो जाता है अदोग चिंतित तामसा इस वास्ते अकर्म कहो चाहे भगवान कहो चाहे आत्मा कहो वो एक ही हो जाते हैं इस वास्ते तीनों से मुक्ति हो जाती है तो कर्म अकर्म का ये तात्पर्य है जो पहले कहा ये सर्व समारंभ सबके सवाल काम संग कोई कामना नहीं है कोई संग गंगा जी बहती है गंगा जी से हजारों गायों पी जाए हजारों ब्राह्मण स्नान कर रहे अपना बदन तर्पण करे तो गंगा जी को कोई पुण्य नहीं होता गाय बह जाए कहीं कहीं ब्राह्मण बह जाए तो गो हत्या ब्रह्म हत्या गंगा जी को लगती ही नहीं क्योंकि गंगा जी का भाव ही नहीं कि इनको बहा दे इनको ठीक कर दे वो अपनी धुन से बह रही है आप साहब कोई मरे तो मरे कोई जीते जियो जी तो जिसकी भाव नहीं है वो कर्म नहीं लगती। गीता में लिखा है यश नाहम कृतो भाव बुद्धि यश न लिप्य दे करते तो अभिमान न हो और बुद्धि लेप मान न हो मन कामना आसक्ति न हो और करते तो नहीं हो तो स्वामी से मान लो का नहंती न निभ्य थे संपूर्ण लोगों को मार ले सब कदर कर ले एक साथ तो न मारता है न मानता है अहम कृत भाव अगर अहंकृत भाव है तब तो मरे बंधेगा ही तब तो कर्म शुभ करे तो बंधेगा अशुभ करे तो बंधेगा और जन्म मरण होगा तो निर्मम और निरहंकार शांति मधि निर्मम और निरहंकार हो जाए तो निर्मम कर्म योग में भी निर्मम निरहंकार का है दूसरे अध्याय के सत्र श्लोक में और भक्ति योग में भी बार बार ध्यान का निर्मम और निरहंकार है सम दुख का सुख का क्षमी और निर्मम निरहंकार हो गया और ज्ञान योग में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिज्ञम विमुच्य निर्मम वो अहंकार पर निर्मम शांत हो ब्रह्म हो जाए गल्प दे तो निर्मम और निरहंकार होना पड़ेगा। कर्मयोग से देखो तो निर्मम निरहंकार ज्ञान योग से निर्मम निरहंकार भक्ति से तो निर्मम निरहंकार शायद कबीर साहब कहते हैं मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार मैं और मेरा यही माया मैं और मोर तोर से ही माया और मैं मेरा मिट गया माया छूट गई माया ही बंदी रही तो मैं मेरी जेवड़ी मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार दास कबीरा क्यों बंधे क्योंकि जाके राम आधार जगत राम जी है राम जी का ही बंधे राम जी वो क्यों बंधे इस वास्ते संतों ने मेरी का त्याग बताया त्याग करना कि मैं और मेरा अपन का त्याग करो और त्याग करोगे शिखर ध्वज और चूड़ाला के प्रसंग में भी वो कुंभ मुनि बनकर गई चूड़ाला कुंभ मुनि ऐसे मुनि बन गई राजा से जब त्याग कर लो तो राज का त्याग कर दिया फिर ये मृत तरह है आसन है इधर त्याग कर दिया लंगोची रही लंगोची त्याग तू भी फोड़ दिया त्याग कर दिया क्या और त्याग राजा अभी तो त्याग हुआ नहीं तो पर्वत ऊपर कूद रहे थे क्या कर रहे हो अब फिर का त्याग कर और कुछ है नहीं मेरे पास इसका त्याग कर ऐसे त्याग नहीं होता समझे सभी मर जाओ तो क्या अब सभी मर रहे सभी त्याग हो गए दुनिया में सब मरते ही है तो सब त्याग हो जाएगी तो फिर त्याग क्या होता है भाई मैं और मेरा ये मैं मेरा त्याग न मैं हूं न मेरा है मेरे मोर मेरा अंकार तो ये बनता है ऐसे बन से क्या होता है कर्म अकर्म हो जाते हैं करते हो मान्य और फलित छन हो कर्म अकर्म हो जाते हैं और फलेच्छा करते जो रही थी कर्म करे तो अकर्म में कर्म हो गया कर्म में अकर्म हो गया और आत्मा मैं सबको आत्मा मैं आत्मा को सब में वो एक हो जाएगा आत्मा और परमात्मा और अकर्म ये तीनों एक ही तत्व है कुछ नहीं करना है विषय इस तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान ने इसको बताया है तो ये बताए भाई ये चीज है इनके पांच लोगों में व्याख्या हुई है अठारवा श्लोक तो मूल है 19, 20, 21, 22, 23 इन श्लोकों में कर्म में अकर्म इसका ठीक वर्ण हुआ है। इसके बाद गलत संघर्ष मूर्ति से ये 23 में से 32वें तक तरह तरह के यज्ञ बताए यज्ञ वो भी कर्म है ये सब वर्ण है कर्म ज्ञान विदितान सर्वान एवं ज्ञातो ये कर्म से होते हैं परंतु भाव निष्काम है अहंकार है नहीं तो ज्ञान आगे लगे हो सब ज्ञान ही लग दो जाते वही युक्त योगी कृष्ण कर्म संपूर्ण कर्म करने वाला कृतकृत्य है और योगी है निष्काम योगी है और संपूर्ण कर्म करने वाला है तो कृतकृत्य भी हो गया और ज्ञात ज्ञात भी हो गया और प्राप्त प्राप्त भी हो गया उस काम नहीं रहा इसका अलग अलग वर्ण भी आया है 15 श्लोक में कहा 15 अध्याय में कहा है सर्वविधि सर्वभावे स्वभाव माम बलती यो माम ये मूलो जानाते पुरुषो तुम सर्वित भजती माम सर्वभावे स्वभाव से मेरा ही भजन करता है। कितनी बढ़िया बात बोली, कोई कर्म लागू नहीं होता, मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्व सर्वज्ञ हो गया। सर्वज्ञ कई आदमी जान रहे वहां तो जान रहे वहां सर्व गए कुछ नहीं, ये नहीं है। सर्वित वही है जो कर्त करना बाकी रहा, ना जानना बाकी रहा, ना पाना बाकी रहा, वो सर्वित है, ये भगवान ने कहा है। तो वो सर्वित हो जाता है कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, अरियो माम पश्चिम सर्वत्र सर्वोत्तम में प्रसिद्धि, ऐसी बात है। तो ये कर्म और अकर्म की बात है। अब कर्म में जाता आपकी जानना चाहे वो बताओ, आपके शंका वो बताओ, मुझे कैसा चलूंगा।
कर्म में अकर्म देखना और
अकर्म
में कर्म देखना यही एक बड़ी संशय वाली बात है,
ये
स्पष्ट नहीं हो रही।
क्या हुआ?
कर्म में अकर्म देखना, कर्म में कर्म को देखना, ये स्पष्ट नहीं हो रहा।
अच्छी बात है। मानो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, कामना नहीं है संकल्प नहीं है, इससे रहित होता है कर्म, वो दग्ध करने में अकर्म हो जाता है। कर्म ये बंधन कारक होते हैं कामना से, जित की इच्छा से, कामना से, वासना से, तृष्णा से, इससे आदमी बंधता है। ये बिल्कुल नहीं हो तो बंधता ही नहीं। कर्तृत्व अभिमान न हो, कामना न हो, ये दो बात है। इन प्रकरण में यही बातें आई है। ये है आपको बताया कि 16वें अध्याय से चला तो भगवान ने अपने अवतार का विषय बताया 10वें तक, और काम संचय कर्म नाम सिद्धि जनते हुए बताए कर्म करने वाले क्षिप्र मीमान सिद्धि भी करूंगा। और भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम से चातुर्वर्ण्यम गया सिस्टम, ये चातुर्वर्ण्यम तेरवा हुआ ना, चातुर्वर्ण्यम गया सिस्टम। तो इस चारों वर्णों की मैंने रचना करी, परंतु तस्य कर्तार मां विद्धि अकर्तारम, करता हुआ भी मैं अकर्ता हूँ, मानो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं, कर्मों के अनुसार उन्हें रचना कर ली। आज गाल कहते क्या करे कि भाई का ब्याह करो तो भाई का फूल भाई में कर, और अगर यह नमाम कर्मानी नहीं बनती क्योंकि नमे कर्म फल हंस भी है करती भी नहीं, हंस भी अभी नहीं है न करती तो मैं कर्मानी। तो भगवान कहते हैं नमे कर्म इतनी मांग यो भी जाने, ऐसे जो जाने कोई कर्म नहीं सोच देते, ऐसे कोई जान गए ये मेरी युक्ति है, सबका आरंभ कम न कामना से रहित हो और कर्तव्य रहित हो, चातुर्वर्ण्यम मेरा सिस्टम, कर्तारम अकर्तारम, और अगाड़ी नमाम कर्माणि निम्बन्ति, क्योंकि नमे कर्म फले स्पृहा, कर्म फल में स्पृहा नहीं है। इति मांग यो भी जाना तो कोई हो जाओ, और साधु हो, गृहस्थ हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, ईसाई हो, वो मुसलमान हो, बौद्ध हो, कोई हो, तो ये अकर्म हो गया। अकर्म की मुख्यता है, मानो कर्म बंधन कारक न हो, शुभ और अशुभ दोनों बांधते हैं, शुभ कर्म में स्वर्ग आदि में बांधेंगे और अशुभ कर्म नरक आदि में बांधेंगे, और अकर्म होकर तो बंधे जाकर कभी नहीं हो तो ज्ञान के बग्र को मानो। देखो मूंज होती है ना, मूंज तो मूंज से बांध देते आदमी, जो भी बांध दे लकड़िया बांध दे, मूंज से बांध देते हैं, खाट बनने से मानने में, पर उससे अगर जला दी जाए तो आटा वैसा वैसा दिखता है, और आप लोग बंधे का मानने होगा क्या, क्या होगी अग्नि खत्म हो गया, ऐसे लोहा तपा हुआ है उस पर एक पहले चिपका दिया एक अखबार कागज, अब लोहा तब जल गया, अब बांसो तो उन्हें प्रश्न पढ़ो बांस लो, और हाथ लो तो जेरा जी, तो ये कर्म अकर्म हो जाता है। लिख है बांचा है सब कुछ, उठाओ कागज क्या उठा है, राग हो गए मुंह से बांधने वाली है, फिर बांधने वाली जल गई, अब क्या बांधे, आंखों वैसे ही दिख रहे, सौ वैसे दिख रहे, बस आदमी भूल जाए ऐसे जिसके सब कर्म जैसे सर्वे समारंभ कामना संगम से रही थे मौत हुई है न करते तो अभिमान है न फले चाहे न कामना है किसी से कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा हुआ तो लग्न कर्मणम हो गया वो मूंज जल गई वो कागज जल गया पटम काम आ जाएगा रात में काम आ जाएगा बंद कर दो परंतु बंद लगाने ये बात है तो अकर्म कहने का मतलब कर्म का अभाव हो जाए बंद नहीं हो जाए और बोलो ये अकर्म है तो करते तो अभिमान और फलेच्छा है दो चीज है फलेच्छा चाहते हम काम करते हमारे गुण मिलेगा वंग मिल जाए स्वर्ग मिल जाए वैकुंठ मिल जाए अमुक चीज मिल जाए पुत्र मिल जाए धन मिल जाए ब्याह हो जाए पुत्री लड़की की शादी हो जाए ऐसी कामना कर जो कर्म किया जाए वो सकाम कर्म होता है तू तो बंद लो भाई
कर्मयोग में काम आसक्ति का त्याग ही बताया करते अभिमान का त्याग नहीं बताया
कामना बताया
कर्तव्य तो अभिमान का त्याग नहीं बताया
कभी नहीं बताया तो कर्तव्य अभिमान त्याग हो जाएगा फलेच्छा नहीं रहेगी तो कर्तव्य क्या करे विचार कर बताओ आप सब हो जाएगा कोई फल की इच्छा नहीं है किसी कोई संबंध नहीं है तो कर्ज तो कहाँ जाएगा सब दूर हो जाएगा ये दो विश्वास ने बताया कि दो योग है ज्ञान योग में कर्ज जो अभिमान है और कर्ज योग में फल इच्छा है कामना है तो ये दोनों होने से अकर्म हो जाएगा सभी यहाँ है कर्मयोग का विषय विषय यहाँ कर्मयोग है भगवान कहते हैं जन्म कर्म से दिव्यम मेरा कर्म दिव्य है तो दिव्य कैसा होता है कि दिव्य मैं करती तो अभिमान नहीं होते दिव्य हो जाए तो दोनों बताया कैसे करता अकर्ता हम और न मान कर्मानी बंदी जीव न मे कर्म फले तो नहीं है इस बात का कर्म है तो दोनों बात बता दी दोनों में एक कर दो कर्तव्य हो जाएगा एक कामना सर्वदा त्याग हो जाएगा प्रभात यदा कामना सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनिव आत्मा तुष्ट सर्व प्रज्ञ सुलोचे दीपक दे दीजिए साठ मिनट प्रसन्न हो गया आशुद्ध कर्म परमाणु प्राप्त हो गया आशुद्धि जब परमाणु प्राप्त हो जाए आशुद्धि नहीं हुई तो कर्म हो जाए योगस्थ कुल कर्माणी योग मानो समता समत्व योग उच्चते योगस्थ कुल कर्माणी योग में स्थित रहते हुए कर्म करो समता में रहते हुए कर्म करो योगस्थ कुल कर्माणी क्या संगम त्यक्त्वा और फलन से युवा फल का राशि का त्याग कर दो फिर कर्म करो समत्व योग उच्चते योग क्या समता का राग है हरदम समता में राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना राजी है ना नाराजी है ये कर्म लगते हैं लोग युद्ध करने कर्म युद्ध करने कर्म नहीं लगता ऐसा कर्म कर्म तो राग द्वेष में लगते है राग द्वेष रही थोड़ा पर कर्म बंधन कारण नहीं होते और बोलो जो जो आपके संदेह हो वो बोल रहे हो कहना तो मेरा अंत क्या और सामने गीता पढ़ी है कितनी जाती है अंत अलग है वहाँ स्वर्ग मत्य से धर्म से त्राय थे चार बात बताई ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे तो मान सुनो सांख्य में तो कह दी सुनता कौन से जड़ती है सुख दुख के समय करता है सांख्य विषय तो कह दी योग के विषय में सुनो तो योग के सुन करके चार बात बताई क्या
नहीं
नहीं कर्म बंद प्रहसते कर्म बंद प्रहसते पापों में वापसी और कर्म कर्म बंद नहीं कर्म प्रयास महत्व गया स्वर्ग चार बात बताई तो बुद्धा जन तो या पार्था कर्म बंधन प्रास से और नेहा भी करना सोचती उसके अपक आरंभ का भी नाश नहीं होता और उसका ऊंचा फल नहीं होता और थोड़ा भी अंदर कल्याण कर पाए चार बात बताई कर्म योग में यह चार बात है। तो कर्म करते हुए भी निर्णय करें करते हुए भी राग द्वेष नहीं है हर्षोग नहीं है ममता अहंता नहीं है तो क्या लगे पाप न पाप लगे न पुण्य लगे वो समता जो थे समझ तुम योग उचित योगस्थ उस योग में समता में स्थित हो कर्म करो इतस्तर्गो ये सांग साम्य स्थित माना जिन लोगों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया उन लोगों ने यहाँ रहते हुए जीत संसार मात्र को जीत गए मात्र संसार पर विजय होगी ये कामना नहीं बोलो कामना नहीं है तो सभी संसार को जीत गए ये दिल जो ये साम्य स्थित माना संसार किस पर विजय करता है जो चाहता है उसको कर्म मान देता संसार कुछ भी चाहना नहीं संस क्या मान दे कैसे मान दे कैसे मान दो तो संसार से ऊंचे उठ गए राग द्वेष और संसार फट रहे बोले बाबा जी बढ़ जाओ भले कृष्ण करो भाई बोलो भले बैलो ऊंचे ऊंचे राग द्वेष से तो इसे परिपंथी दो यही इसके बारे में लुटे रहे हैं तो सब काम करो तो इसे युक्ति करने की ये बात है कि सब दूसरों के हित के लिए करो अपने स्वार्थ का त्याग दूसरों का भला हो दूसरों का कल्याण हो ये इतनी सी बात पकड़ दो आप घर में रहो काम करो पर सबको आराम मिले सबको आनंद मिले परिश्रम मैं करूं काम मैं करूं आराम सब ले सुख सबको हो जाए एक एक भाई एक एक बहन ऐसे करे तो घर कितना पवित्र हो जाए एक दुख मिट जाए यहाँ सत्संग आवे लेकिन भाई सबने आराम मिले सबने सुख मिले तकलीफ मैं सह लूं और सबको आराम मिले आराम के लिए ही करे सबके लिए चार बात है मेरा और दुनिया का अभी और परिणाम में कल्याण हो अभी भी कल्याण हो और परिणाम भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो चार बात है मेरा और सबका और अभी और परिणाम में ही तो ऐसा काम करो सब कल्याण के लिए तो कर्म बंधेंगे नहीं और कर्म का बंधन नहीं होगा और कोई बात नहीं पूछो कामना का त्याग करना है कर्तव्य अभिमान का त्याग करना है जिसमें एक कर्म हो जाएगा कर्तव्य तो अभिमान त्याग कर दो तो कामना भी छूट जाएगी और कामना का त्याग कर दो कामना और ममता का त्याग करे तो अहंता के साथ ही ममता होती है मेरा अहंकार ये ममता छूट जाएगा ममता नहीं रहेगी तो अहंकार नहीं रहेगा अहंकार नहीं रहेगा ममता नहीं रहेगी एक छोड़ने से छोड़ी दोनों छोड़ जाएंगे अहंकार जो तो ममता ही है मेरा अहंकार और ममता है वो भी तो मेरी चीज है तो मैं रहा निर्मोह मेरा अहंकार तो इस बात से क्या करे कि सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबको आराम कैसे मिले सदा यही बात रहे सभी सर्वभूत हित सता प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए आपकी आप कितना करते हो कैसा करते हो इसकी कोई बात नहीं परंतु मन में हितता ही सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके मंगल आनंद होता रहे, किसी को दुख न हो, ऐसा भाव। ऐसा करने से सब सुखी हो जाएगी, कारण नहीं है। आप निर्लेप हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, किसी को भी दुख नहीं होता, आप निर्लेप मुक्त। उसी द्वारा होगा दोनों का, दुनिया का हित होगा, स्वतः स्वाभाविक। जिसका ऐसा स्वभाव है कि सबका हित हो, उसकी मात्र चेष्टा दुनिया की हित होगी, उसकी हवा से दुनिया का कल्याण होगा। क्यों स्वार्थ है ही नहीं, गंगा जी की हवा से ठंडी आती है, जब रात ही बैठ जाओ किसी बार। तो ऐसे जो तत्व की जीवन मुक्त महात्मा है, उनके द्वारा बड़ी शांति मिलती है। क्यों कामना नहीं, अहंकार नहीं। छोटा बच्चा गधी का भी अच्छा लगता है, कुत्ती का बच्चा अच्छा लगता है, राग द्वेष नहीं, छोटा वाला है। राग द्वेष वाला बड़ा होते अच्छा नहीं लगता। तो भाई बात तो यही है। अब एक बात और बता भाई, कामना का नाश कैसे हो? कामना बड़ी विचित्र बात है, कुछ न कुछ चाहना रहती है। तो चाहना का सर्वथा त्याग हो सकता है? भजिता ने कहा है, जैसे सर्वेश माला में काम संकल्प भजिता कहा है, विगतच्छा भय क्रोध हो, वितराग भय क्रोध हो, भगवान ने बताया ऐसा। काम क्रोध दीप जाना इंतजाम था, अभी तो ब्रह्म निर्माण बनती काम क्रोध से रहित है, उनके अभी जीवित और मर तो ब्रह्म निर्माण ब्रह्म प्राप्त होता। तो कामना का नाश कैसे हो? तो ध्यान देना एक बात बता भाई, कामना पूर्ति होने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मान लो किसी आदमी के 100 रुपयों की कामना हुई और 100 रुपया मिल गया, तो 100 रुपया मिल गया तो 100 2000 की कामना हो जाएगी फिर। अरे इतना होशियार रहे पहले से कि कामना एक बार हो गई, अब कामना बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो 100 रुपया मिल गया, तो जब तक 100 रुपयों की कामना नहीं थी, उस समय जो स्थिति थी वही स्थिति आई, और क्या हुआ? ध्यान देना, 100 रुपयों की इच्छा हुई, पहले 100 रुपये इच्छा हुई नहीं, अब हो गया मिल गया, तो पैसा अब इच्छा कोई नहीं, तो पैसा वही से गया कोल गोली का बैल फूल के, फिर वही आ जाते हैं, वही तो मिलता गया, घुस नहीं जाएगा कोला परिश्रम मिला। और कामना का ये कारण है कि पूर्ति में तो होती है कामना, अपूर्ति में होता है क्रोध, लोभ होता है। और कामना अपूर्ति में क्रोध होता है, और काम और क्रोध लोभ ये नरकों का दर्जा। और कामना ही नहीं रखे तो न तो क्रोध आता है न लोभ आता है, हमारे ही नहीं। अब आप प्रश्न करो, ये चीज बहुत बढ़िया है। कामना से मिलता क्या है? कुछ नहीं। कामना पैदा नहीं हुई थी, उसमें जो स्थिति थी, कामना पूरी पूर्ति करी और मेहनत करी, काम पूरी हो गई, बस वही स्थिति में आ गया तो मिला गया। ये साथ आ गई, ये समझ में आती है बात? आपको जो रुपया मिल गया तो पहले इच्छा ही नहीं, अब है ही नहीं, मिल गया तो आप आ जाएगी नहीं, 100 मिल गया तो 1000 हो जाए, 1000 हो जाए 10000, 100 का 1000 हो जाए तो 9000 का घाटा, और 10000 हो जाए तो फिर लखपति होना चाहता है, अब 90000 का घाटा है। और 1 लाख हो जाए तो फिर 10 लाख से नहीं है, फिर तो करोड़पति हो, अब 99 लाख का घाटा है। तो लोग कहते हैं घर से तृप्ति होती है, धन तो बड़ा डाकी है, निर्धन आदमी छोटा डाके अभी बहुत बड़ा उन्होंने लाखों का नुकसान लाखों का घाटा होता है। गरीब आदमी का दस पीढ़ी में लाख का घाटा कभी नहीं हुआ। बोलो हमारे घाटा होता ही नहीं। कई आदमी खड़े बात सुनी, कई आदमी खड़े थे वर्षा हो रही थी वर्षा, वो देखो उस गांव में वर्षा हो रही है, उस खेत में वर्षा हो रही है, उस गांव में वर्षा हो रही है। ये मारवाड़ में वर्षा की इच्छा होती है ना तो वैसा देखते हैं, लेकिन तो कोश है 60 कोसों में तो गाल गर्दना सुनती है, 100 कोसों पर तक बिजली चमकती है, आगे जाने नहीं मिलती। तो वहां होता है वर्षा वो हो रही है तो सब कहते हो मेरे खेत में बरसा, हमारे खेत में नहीं हुई, हमारे गांव में बरसा होती, हमारे गांव में एक बाबा जी खड़े थे, बाबा जी वर्षा कहाँ रो है कि खप्पर में होती है, हमारे खप्पर में जहाँ वर्षा वहीं चल जाएगी, हमारे खप्पर में वर्षा है, बरसा हमारे खप्पर में हो रही है, जहाँ वर्षा वही चल रही होगी, न हमारा खेत है न हमारा गाँव है, वर्षा हमारे खप्पर में होती है। अपना अपना पन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा होता है, अपना पन करने की मौत हो जाती है। एक चूल्हे पर रोटी बनती है वो एक तवी पाती है वो साग मिलता है, और एक चूल्हे की रोटी है तो उस चूल्हे पर जगह जगह रोटी बनती है। कहीं से ले आओ बोलो कितना नफा है, घाटा कितना है। एक बाबा जी थे वो आटा मांगते थे, तो एक गांव में आटा मांगा तो बड़ा खप्पर सब भर गया, दबा दबा दे भर गया खूब, और मैदान बीच में गांव के बीच में रोने लगे जोर जोर से, कब बाबा रोते जाओ कि गांव गांव में इतना आटे का घाटा रोजन होता है हमारा, कितना घाटा जो गांव में कितने गांव होता हो, एक एक गांव में इतना मेरा रोजन हो जाता है, अब फिर उस एक गांव में दूसरे उस गांव में रुबर, बोलो कितना घाटा हुआ, एक एक गांव में इतना आटा घाटा हो रहा है, कितना घाटा हुआ ऐसे घाटा घाटा है, और मौज हो जाता है गई चिंता बेटी मनवा बेपरवाह, जिसके कस नहीं सहे सो सहन पति सहा, बादलों का बादशाह है कोई सहन नहीं है, ऐसा आदमी हो सकता है नहीं। गीता कहती है ना, गीता ऐसा तो हो सके तो जाती है, नहीं हो सके थोड़ी क्या, गीता से भगवान तो सर्व के है ना, तो वैसे ही करते हैं। बुखार में मौत हो सकती है, तकलीफ में मौत हो सकती है, घाटे में मौत हो सकती है, अपमान में आनंद हो सकता है, निंदा में मौत हो सकती है, हर हाल में मस्त रह सकते हैं हर हाल में, क्योंकि दूसरा कोई निंदा करे स्तुति करे तो हम क्यों राजी नाराज हो भाई, धन आ गया तो अच्छी बात, चला गया तो अच्छी बात, हमें राजा मार ये आने जाने वाली चीज हो, लेकिन हम बीच में क्यों फंसे, आग में पड़ना नित्य आने जाने वाला नित्य है, अपने मौज में रहो। वो कश्मीर राजा गए गंगा में बाबा जी बैठे थे कि बाबा जी आप कौन है, कि आप कौन है, कि मैं राजा हूँ, कि मैं महाराजा हूँ, आप महाराजा कैसे है, आप राजा कैसे है, तो कहते हैं मैं रात में से चाय जिसको निकाल दू चाय जिसको दे दू, अच्छा ऐसा वहां तो अपने रात में से मच्छरों को निकाल दीजिए, ये क्या आपके पैदा होती है रात में, क्या एक उपस्थित होती है बताओ, वो जरूरत है तो निकाल लीजिए, लोग चाहते हैं मच्छर चाहते क्या बात, एक मच्छर को निकाल के चाय जिसको निकाल दू तो और सारी जिंदगी को लाख रुपया हमारे को दे दो, अब कोई आंकड़ा लगे किसा लाख आदमी पक्का ही जल्दी को मिले मेरा तो लाख कसम तो आप महाराज कैसे हैं कि हमारे कुछ नहीं चाहिए हमारे महाराज में बंदा लगो हमारे कुछ नहीं चाहिए क्या बंदा लगी ये महाराज आप तो अकेले रहते हो वहां अकेले रहते हैं और हमारे अकेले ठीक रहते हैं आपके हमारे तो महाराज सारा लुका चारों तरफ कि हमारा भय है ही नहीं भय वो चल पता लगता है कि हमारे वस्तु है ही नहीं चोरी का भय आपके हमारे हो गई नहीं हम तो मौज में रहते आनंद में महाभूमि सैया मसृन उपधान बुदलता दितानस्ताकाशो जन मनुकूलो मिला सुरदीपंद सदृतवनता संगमुदित सुखी शांत से विगत भव भीतिर्प तो तुम्हारे महाराज सैया का विचार करें महाभूमि सैया तुम्हारा तो खाती एक जगह रहता है हमारे रात भर लुभ को तो नीचे पड़ते ही महाभूमि सैया सब आपके खाट मकान सब हमारी भूमि से होगा हमारे मकान पर रहते हैं आपके सब मकान हमारे मगर आपके दिन तो नहीं है आपके सब हमारे उच्छर से क्या शीर्ष और भरा और सी और गर्भ से रथ लगाओ रथ लगाओ रथ लगाओ रथ लगाओ रथ लगाओ बहुत तुम्हारे तंबू के आकाश तंबू है देखो राजा देव कितने चार गिलास कभी लाना पड़े नहीं कभी सोना पास ना साफ करना पड़े नहीं कोई पैर नहीं ऐसे कारण सुन रहे तो पंखा पहले आड़ लगाओ पंखा लगवाने आड़ है नहीं चारों तरफ जंगल से आओ नहीं हवा मट्टी हमारे पहले आती शुद्ध हवा आती जंगल आपके पंखे शुद्ध नहीं होती ऐसे हमारे विचार रस्ता का सो जजन मनुकूल हो तुम्हारे दीपक सुरदीप स्तंग तुमने हमारे दीपक है न तेल लाड़ा पड़े न बाती लाड़ी पड़े न टैक्स लगे कि एक बत्ती लगे तो चार रुपया लगेगा हमारे कुछ नहीं लगे अरे हमारे ये कल से है हमारे कल से आ गया तुम्हारी कला हमारी कान है चलती है ये लिखा भागवत में के जो दृढ़ तो साधु हुए वे दुर्मदांध महान अभिमानी धनियों की क्यों गर्व करे क्या गुफाएं रुक गई क्या पत्ते फूल वृक्षों के नहीं आते क्या सरिताओं सूख गई कभी पसंद संत क्या तीस रेटी नहीं मिलते उसी गुदरी बना लो और वृक्षों का फल पत्ता खा लो और जल पी लो नदी में गुफा में जाकर रह जाओ मोल से अंडे मस्ती से आजाद होते हुए